बारे में भी कुछ लोगों का कहना है, जैसे कुरान मुसलमान उसने इस्लाम को कुरान कहता है कि एवरी मॉर्निंग एंड द इवनिंग फिरौन को जहन्नम के ऊपर पेश किया जाता है। 24वें पारे में आए थे, रोजाना एक बार सुबह में, रोजाना एक बार शाम में जहन्नम के ऊपर पेश किया जाता है। किसी मुसलमान के बारे में ऐसा कभी आपने पढ़ा? हो ही नहीं सकता। हाँ, मुसलमान को सजा मिलेगी, एक मोमिन को अजाब होगा, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक मोमिन और एक मुस्लिम उसने अगर गलत काम किए हैं जिससे अल्लाह नाराज हो और अल्लाह सुबहान व तआला उसे मरने से पहले माफ ना करे तो कब्र में अजाब देंगे। और अगर उसको कब्र में आजाद दिया लेकिन वो आजाद उसके लिए इनफ नहीं था, तो फिर कयामत के दिन अल्लाह सुबहानहू व तआला अगर चाहेंगे तो जहन्नम में डालेंगे, खालिदीन फिया नहीं, जब तक अल्लाह सुबहानहू व तआला चाहेंगे उतनी मुद्दत वो मुसलमान और वो मोमिन जहन्नम में रहेगा, फिर अल्लाह सुबहानहू व तआला उसको वहां से निकाल के इंशाअल्लाह जन्नत में डालेंगे। खालिदीन फिया अलग सिर्फ कुफार और मुशरिकीन के लिए, ईमान वालों के लिए नहीं है। तो सैयदना उवैस करनी रहिमहुल्लाहु तआला अन्हु को इतनी ज्यादा शोहरत, इतना बड़ा मकाम, इनके वाकयात इंशाअल्लाह जब बयान करेंगे अभी तो हमें भी ताज्जुब होता है कि क्या मकाम अल्लाह ने दिया और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह क्या थी। उवैस करनी रहिमहुल्लाहु तआला अन्हु की वालिद का नाम है आमिर, उवैस बिन आमिर, ये यमन के रहने वाले थे, कबीले ए मुराद यानी ट्राइब जो मुराद का था उस कबीले से बिलोंग करते थे। उस ट्राइब में भी कर्ण एक और शाख है, ब्रांच है, उससे आप बिलोंग करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि कर्ण कर्ण गांव को, विलेज को कर्ण क्यों कहा गया, कभी खुदाई हुई कुछ तलाशने के लिए, तलाश करने के लिए, तो इलाके में कहीं पे जहां से आप हैं वो जो सींग होती है बैल की, वो सींग मिला, तो उस गांव को उस सिंह की तरफ मंसूब कर दिया गया और करण गांव का नाम रख दिया गया। ये एक कौल है, कुछ और भी हो सकता है, अल्लाह आलम बिस्सवाब। बहरहाल उवैस बिन आमिर करने रहिमहुल्लाहु तआला बिल्कुल सिंपल वाकया इनका, रोजाना 1000 रकात पढ़ते थे या रोजाना रात में पूरे कुरान खत्म करते थे, ऐसा कुछ भी वाकया, ऐसा कुछ भी वाकया। उनकी शोहरत की वजह सिर्फ और सिर्फ वालिदा की खिदमत, वालिदा मतलब राइस आंट, वालिदा मतलब फ्रेंड्स, पेरेंट्स, यस पेरेंट्स यू आर राइट, मदर है, उनकी माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी। माँ की खिदमत हम भी करते हैं और आप भी करते होंगे, लेकिन कुरान में एक आयत है सूरह बनी इसराइल में, वला तकुल लहुमा उफ्फिन, वला तकुल लहुमा उफ्फिन, उन दोनों को उफ मत कहो, ये इसका लिटरल मीनिंग है, माँ और बाप को उफ मत कहो। एक बंदा सवाल करता है मतलब कुछ और कह सकते, तब उफ उफ नहीं कहने का हुक्म क्यों है, कुरान ने ये सेंटेंस क्यों यूज किया कि उन दोनों को उफ मत कहो। आगे चूंकि उर्दू का जो तर्जमा होता है उनको उफ भी मत कहो, भी का कोई वर्ड कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया। आयत यहां से शुरू होती है, वकदा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, वकदा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म है, सिर्फ एक अल्लाह। उसके बाद फौरन जो जुमला कुरान ने इस्तेमाल किया, ये बड़ी अजीब बात है, कुरान की फसाहत और कुरान की बलागत, कुरान की ब्यूटी और खूबसूरती, अगर वाकई में हम कुरान पढ़ें और कुरान को समझ के पढ़ें और कुरान पढ़ने से पहले जो कुरान के मबादियात है, उसूल है, तरीके है, ग्रामर्स है, कुछ पढ़ लें, फिर जब कुरान शरीफ समझ में आता है तो बड़ा ही मजा आता है। देखिए अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके बाद कुछ और कहना चाहिए। नबी पाक अलैहि सलाम के बारे में कुरान कहता है कि भूखी बात मानो, कुरान ने ऐसा कुछ नहीं, कुरान ये कह सकता था कि हराम से बचो, हलाल इख्तियार करो, कुरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुरान ने क्या कहा, वबिल वालिदैन इहसान, कुरान ने फौरन जो हुक्म दिया वो ये कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। एहसान का तर्जमा
मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से हुआ है एहसान। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पास आए और आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने शेष कुछ सवाल किए। उसमें वो क्या था, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। तो एहसान की तारीफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने क्या की थी, अन तअबुदुल्लाह, अन तअबुदुल्लाह कअन्नक तरा फइन लम तकुन तरा कअन्नहु यरा। अल्लाह सुबहानहु व तआला की आप इस तरह इबादत करें कि आप अल्लाह सुबहानहु व तआला को सामने देख रहे हैं। अगर एक मोमिन के दिल में ये कैफियत पैदा ना हो, हमारा ईमान कितना वीक है, अल्लाह सुबहानहु व तआला को हम देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम ये सोच सकते हैं। तो फरमाया आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कि अगर ये एहसास ना हो कि आप अल्लाह सुबहानहु व तआला को सामने देख रहे हैं, इतना तो महसूस होना चाहिए और यकीन और ईमान होना चाहिए कि अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें एहसान नहीं चाहिए। कुरान ने वही एहसान यहाँ पर इस्तेमाल किया, वक़द रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसानन, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन के साथ शुरू करने में जो एहसान का वर्ड है उसका मतलब ये कि उससे टॉप उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, यह है जन्नत तहत अक्दामिहिम, का ये कौल हदीस मुबारक है। लो जाइए, वो आपको मुकम्मल इग्नोर कर देते
हैं।
फादर को, मुकम्मल इग्नोर कर। बहुत सारे वाकयात है, बस खवातीन आकर के हमें रिक्वेस्ट करती हैं क्या कि इमाम साहब आप मस्जिद में माँ की फजीलत के बारे में तकरीर करें। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी फादर ने मुझे आकर ये कहा कि मैं यूएस में 22 साल से हूँ कि फादर के रिस्पेक्ट और फजीलत के बारे में किसी ने नहीं कहा। हाँ मदर्स ने जरूर कहा, अच्छा भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो उर्दू में बोलने के लिए दिया गया, मुझे तो उर्दू भी नहीं आती है, इंग्लिश में क्या बोलूँ। ये बड़े बड़े माशा अल्लाह उर्दू इंग्लिश के प्रोफेसर बैठे हुए हैं तो वैसे भी डर लगता है बोलने में। तो अगर किसी भाई को बात समझ में ना आती, वैसे मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, सब लोग इनशाला समझ लेते होंगे, तो वहां पे चले जाए तो इनशाला वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे अगर बुरा ना माने। जन्नत हमारी मदर्स के फीट के नीचे है, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब ये है कि एक इंसान, एक मुसलमान अगर जन्नत में जाना चाहे तो माँ की खिदमत अगर प्रॉपर तरीके से कर ले तो इंशा अल्लाह जन्नत में चला जाए। हदीस शरीफ में है कि जन्नत अगर माँ के कदम के नीचे है तो बाप का क्या वैल्यू है। दो किस्म की हदीस है, अल अबू औसतु अबू अबिल जन्नत, बाप जन्नत का बीच का रास्ता है। दूसरी हदीस है कि बाप जन्नत का डोर है, दरवाजा है। जन्नत में इलीगल काम तो नहीं हो सकता कि आप चलो विंडो के थ्रू जंप करके चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। डोर तो खोलना है, और डोर कौन है, फादर है। तो अगर फादर्स को इग्नोर करें, सिर्फ मदर्स ही मदर्स हों तो कैसे। हमारे हमारा मसला क्या है, हम मुसलमानों के खास करके मेरा, हम बैलेंस नहीं रखते किसी चीज, बैलेंस होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ बच्चों से, क्या अगर आपके पेरेंट्स में अगर झगड़ा हो, किसी का भी सपोर्ट मत करना, ना फादर का ना ही मदर। हाँ आपको ये लगता है कि आपके सपोर्ट से उनका वो झगड़ा खत्म हो जाएगा तो विद फुल रिस्पेक्ट सही बात बोलना, किसी की तरफदारी नहीं करना, इसलिए कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन वो दोनों आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको दोनों की जरूरत है। आपको सिर्फ माँ नहीं चाहिए, आपको बाप भी चाहिए, सिर्फ फादर नहीं चाहिए, आपको मदर भी चाहिए। आप दोनों के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। मैं इस वाकया को यहीं छोड़ता हूँ, और वो इस पर रहमतुल्लाह अलैह को वहां छोड़ता हूँ, बीच में एक वाकया है। इजिप्ट के अंदर मिस्र में पुराना वाकया है, हम सब जानते हैं। एक चीफ कमांडर थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब, सबने उनका वाकया पढ़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह ना कोई हाफिज थे, ना आलिम थे, ना मुहद्दिस, ना शेख, ना इमाम, कुछ नहीं। फौजी कमांडर थे, लेकिन जाहिर बात है तक्वा और तहारत इतना ज्यादा है कि उलमा ने बिल इत्तेफाक उनको जब भी उनका नाम लिया, किताब लिखा अरबी में भी और उर्दू में भी, तो सुल्तान असुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह। एक वाकया किताब में लिखा है, मैं ये वाकया इसलिए सुना रहा हूँ कि सैयदना उमैस करनी रहमहुल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने मकाम क्यों, उसी से जुड़ा हुआ ये वाकया भी है। एक बार उन्होंने नोट किया कि मिस्र के बाजार में एक जगह एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम खूबसूरत नौजवान, सेहतमंद माशा अल्लाह, वो हमारे यहाँ हमारे मुल्कों में अगर जूते चप्पल फट जाते हैं तो उसके सिलने के लिए मोची होता है, यहाँ तो माशाल्लाह जरूरत ही नहीं है, तो डोनेट करते हैं। तो वो अपने कंधे पे एक बोरी में जूते वगैरह सिलने के सामान रख करके एक दुकान के सामने, जहाँ पे ऑलरेडी दुकान बनी हुई है छोटी सी बाहर में, अंदर नहीं, वहां बैठता है और जैसे ही सामान वो बोरी उतारता है वहां रखने के लिए, बोरी मीन सैक, लोग उसके पास कस्टमर्स अपने जूते और सैंडल फिक्स करने के लिए बिल्कुल लाइन लगा लेते। कितना कितनी देर काम करता है? सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा काम नहीं करता, सिर्फ 2 घंटे काम करता है और 2 घंटे में 2 दीनार कमा लेता है। जैसे ही 2 दीनार कमाता है अपने जेब में डालता है, दुकान समेटता है और दोबारा वापस वहां से निकल जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने कहते हैं कि इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत नौजवान सिर्फ 2 घंटे काम करके चला जाता है, छोड़ दिया, चला गया। वो दूसरा दिन आया बिल्कुल उसी वक्त, इस वक्त फर्स्ट डे आया था, सेकंड डे भी उसी वक्त आया, अपना सामान रखा, दुकान खोली, लोग माशाल्लाह आना शुरू हो गए और फिर 2 घंटे काम किया, 2 दीनार हुए, 2 दीनार अपने जेब में डाला। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने, रावी कहता है इनके बारे में, वाकया नकल करते हुए, कि जिस दुकान के सामने में दुकान वो बंदा लगाता था वो मोची, उस दुकान के अंदर गए, पूछा कि इस बंदे को कब से जानते हो? बहुत दिनों से जानते। कहा ये सिर्फ 2 दीनार कमाता, सिर्फ 2 घंटे काम करके चला जाता है। दीनार सोने के सिक्के, पॉइंट्स, दिरहम चांदी के पॉइंट्स, क्या वजह है? तुमने इसके बारे में कोई तहकीक की, कुछ मालूम है? कहा कि मैंने बहुत बोला कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हें रोजी दी है इस रास्ते से, तो थोड़ी देर और रुक जाया करो और पैसे कमाओ। वो कहता नहीं, मुझे सिर्फ 2 दीनार ही की जरूरत है, हो गए बस चलता हूँ। तीसरे दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह जा रहे अपना घोड़े शक्ल बदल करके आते हैं और उसी जगह पे जहां छुप करके देखते हैं कि वो नौजवान इनको न देखे, ये नौजवान के निगाह रख रहे। 2 घंटे काम किया, 2 दिनार मुझे जेब में डाला, अपनी दुकान बंद की और चलता बंद। इन्होंने उस नौजवान का पीछा किया, काफी दूर चलने के बाद एक जंगल आया, उसके अंदर वो जंगल के अंदर चला गया, ये छुप करके उसके पीछा कर रहे। फिर वहां जंगल में एक घर था, उस घर में ये घुस गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि इस्लामी तरीका क्या है, घर में नॉक करो, सलाम करके जाओ, लेकिन मैं ये सोचा कि अगर मैंने सलाम किया और इससे परमिशन ली तो ये कहीं भाग न जाए, मुझे ये जानना था कि ये क्या करता है, ऐसा क्यों करता है, जब इसके पास पैसे कमाने के और भी ज्यादा जराए हैं, ज्यादा पैसे कमा सकता है तो सिर्फ 2 घंटे क्यों कमाता है? 2 घंटे में 2 दीनार बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, 2 दीनार सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम है। अगर वाकई में 2 घंटे और काम करें तो 4 दीनार और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 2 दीनार कमा के क्यों चला जाता है? बगैर परमिशन के दरवाजा खोला, अंदर 2 बूढ़े लोग थे, ये नौजवान। हाँ, वहां अपने घर में जाने से पहले वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, सॉरी मैं भूल गया, और वहां से 2 नान खरीदता है और सालन खरीदता है, सिर्फ 2 नान। सुल्तान फरमाते हैं कि मैंने भी उसी रेस्टोरेंट से 2 तंदूरी नान खरीदे और सालन खरीदा और वहां गया, तो घर में घुस गया। उस जो नौजवान ने देखा तो उन्होंने सलाम किया, नौजवान ने कुछ नहीं पूछा कि आप बगैर परमिशन के मेरे घर में क्यों आए, परमिशन लेना चाहिए। फौरन ही पूछा कि नौजवान, और अपनी शक्ल उन्होंने छुपा ली थी, तो नौजवान इनको पहचान कर नहीं था, वो पहचान भी नहीं सकता अगर कभी देखा हो। रावी नरेटर कहता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने पूछा कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम अपनी दुकान सिर्फ 2 घंटे के लिए क्यों खोलते हो, और 2 घंटे में सिर्फ तुम 2 घंटे में 2 दीनार कमा लेते हो, तो 4 और 6 घंटे क्यों नहीं काम करते, उसके उसके पीछे क्या है। नौजवान कहता है तो पहले आप भी खाना खा लें, इसमें वक्त लगेगा। कहा कि नहीं, पहले मुझे स्टोरी सुनिए। तो कहा पहले इन दोनों बुजुर्गों को खाना खिला दूं, काजी का खाना खिला, तो खाना खिलाया, फिर कहा कि आप भी खाना खाए, कहा कि मैं खाना लेकर के अपने साथ आ जाऊं, वो अपना खाना खा लेते, दोनों मिलकर खाना खाए। सुल्तान ने कहा कि खाना खाते खाते स्टोरी बयान कर सकते, उसने स्टोरी क्या बयान की कि जिस जगह आज मैं जूते और चप्पल की मरम्मत करता हूँ, इस जगह ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, मेरा बाप वहां जूते सिलता है, और मेरे पेरेंट्स का सपना था, उनका ड्रीम क्या था कि मैं एक दिन, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैंने पढ़ा, खूब पढ़ा, जितनी तालीम हासिल करनी चाहिए थी मैंने की, जो मेरी सकत और ताकत थी, कि मैं एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अलयूबी का वजीर बने। लाख कोशिश की, मैं कई बार गया उनके दरबार में, लेकिन दरबारियों ने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरे वालिदैन पेरेंट्स बूढ़े हो गए और मेरे फादर इस रास्ते पे पहुंचे, ये अब चल भी नहीं गए, जब ये जवान थे तो मुझे पाला पोसा खिलाया पिलाया, अब ये बूढ़े हो गए तो मुझ पर फर्ज है कि मैं वो काम करूं जो मेरे फादर करते थे, और मैं खिलाऊं, 2 दिनार में मेरा काम चल जाता है, मुझे तीसरे दिनार की जरूरत नहीं है, मैं बाकी वक्त माँ बाप की खिदमत में गुजारता हूँ और जो जरूरी अहकाम है अल्लाह की पूरी करता हूँ। सुल्तान ने कहा अच्छा, अगर तुम्हें सुल्तान से मुलाकात का मौका मिल जाए और उसका वजीर बनने का तुम्हें ऑफर आ जाए तो क्या करोगे। कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो जाहिर बात है मेरे वालिदैन की खिदमत कौन करेगा, मैं इसको छोड़ दो सकता नहीं, इसलिए कि जब ये जवान थे तो मुझे बचपन से पाल के जवान किया, अब जब ये बूढ़े हैं तो इनको मेरी हेल्प और मदद की जरूरत है, मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ, और सुल्तान के दरबार में जाना मुमकिन नहीं है, तो उसका वजीर बनना था। अब सुल्तान ने अपने चेहरे से निकाब और पर्दा हटाया और कहा कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन वही हूँ, तुम्हारी वजारत की नौकरी पक्की, ताकि मुझे नहीं चाहिए आपसे मुलाकात भी, ये मेरा ख्वाब था, मैं चाहता था कि मैं सुल्तान से एक दिन मिलूं, और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अपने बूढ़े वालदेन को, वालदेन की खिदमत है, बिलआखिर उस बंदे को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आलैहि रहमा का वजीर बनने का मौका मिल तो गया, उसने उस नौकरी को ठुकराया क्यों, अपने वालदेन की खिदमत की वजह से। तो कुरान ने क्या कहा, वकदा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिलवालिदैनि इहसानन इम्मा यबलुगन इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। जब ये सिचुएशन आ जाए, ये नौबत आ जाए कि तुम जवान हो जाओ, वो बूढ़े हो जाए, और फिर वो 80 और 75 और 70 की एज में चले जाए, जाहिर बात है उनको तो हर वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है, आशा आप लाठी लेके चलेंगे तो फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे, तुम अगर आप अपने मजबूत हाथ और कंधों का सहारा दो, उनको बाथरूम ले जाओ, उनको वजू कराओ, और नमाज के लिए चेयर या जो भी उनको जरूरत पड़े उनको ला करके दो, इससे बड़ी खिदमत क्या हो, इससे बड़ी खिदमत क्या। कुरान ने कहा उनमें से दोनों या कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कुरान में है हदीस में है कि जाहिर बात है वो इंसान उस एज में चला जाता है, इस एज में एक 2 3 साल का बच्चा वो कुछ नहीं कर सकता, हाथ है कुछ नहीं कर, इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ ऐसे बुढ़ापे से जिसमें मैं दूसरे का मैं एहसान लेना शुरू करूं और मैं मजबूर हो जाऊं, मैं उस बुढ़ापे से आपकी पनाह में आना, मतलब उस बुढ़ापे से पहले मुझे उठा ले। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को एक बार वही आई कि आप उस नौजवान से मिले जो नौजवान जन्नत में आपका साथी होगा, क्या कोई इंसान नबी और रसूल का साथी हो सकता है, क्या मतलब क्या नौजबिल्ला, سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم حارون و جوان دونوں کیا جنت میں غروب جنت شیئر کریں گے؟ یہ تو نہیں سکتا نا. لیکن حدیث میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو وحی آئی کہ فلاں نوجوان سے ملے جو جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا. چنانچہ سفر کر کے آپ جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے پوچھتے کہ یہ نوجوان اس کا بلیا یہ ہے بھائی, اس کی کیفیت ایسی ہے, وہ کہاں ملے گا؟ فائنلی پہنچتے ہیں تو وہ نوجوان گوشت کاٹ رہا ہوتا ہے, بیچ رہا ہوتا ہے. شام ہوتی ہے, جو کچھ بچا ہوا ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑے جو کچھ بھی ہوتا ہے لے کر کے گھر جاتا ہے. اس علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں اندھیرا چھا جاتا ہے, وہ نوجوان گھر میں جاتا ہے اور پھر وہ کھانا وانا تیار کرتا ہے اپنی ماں کو, اپنی ماں کو کھلاتا ہے. اس کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے, کیا کہتی ہے؟ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ دکھا دے. پھر موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اندر جا کے سلام کرتے ہیں اور پھر کیونکہ سن لیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں تم سے ملوں, اس لیے کہ تم جنت میں میرے ساتھی بنو گے, ماں کی خدمت. ہم نوجوان, میں بھی ان میں سے ہی ہوں, بیلنس نہیں رکھتے ہیں. ہماری خواتین غصہ نہ ہو, حق ہے اور حق بات کو بیان کرنی چاہیے. ہر حق کو سامنے بیان کرنا ضروری نہیں ہے, چونکہ یہاں پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے. اور سیدنا ہوئے سرنی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ نے یہ مقام ماں کی وجہ سے دیا تھا. تو میں یہ بولتا ہوں, یا تو ہم مکمل وائف کا سپورٹ کرتے ہیں مکمل, یا پھر بگڑ جاتے ہیں تو والدین کا سپورٹ کرتے ہیں. بیلنس کدھر گیا؟ جب ہم نکاح کرتے ہیں اور قبیل تو بولتے ہیں تو اس خاتون کی پوری ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہوتی ہے, اس کا کھلانا پلانا, دوا دارو, اور اس کو رہنے کے لیے شیلٹر دینا, اور جو مناسب لباس ہو اس کو خرید کے دینا, جو ہم کھائے ان کو کھلانا, یہ فرض ہے سنت نہیں ہے, یہ فرض ہے سنت نہیں ہے. رہا والدین کی دیکھ بھال, ان کی دیکھ بھال تو فرض ہے. آپ نے ان کو اتنی محبت دی کہ ماں باپ کو بھول گئے, اور ماں باپ کا کہنا اتنا زیادہ مانا کہ بیوی کو اگنور کر دیا. بیلنس کی طرح ہم امت وسط ہیں, ہمارے مذہب میں ایگزیجریشن نہیں ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, امت ہیں. بیوی کے جو حقوق ہے ان کو دینا ہے, والدین کے جو حقوق ہے ان کو دینا ہے, بچوں کے جو حقوق ہے ان کو دینا ہے, رشتہ دار اور بھائی بہنوں کے جو حقوق ہے ان کو دینا ہے. قرآن نے میراث میں ہر ایک کا حق دیا کہ نہیں, کسی کو اگنور نہیں کیا. یوسی کو اللہ کیا ادا دیا, ایک اصول بنا بتایا بیان کر دیا, کیا ایک اصول بیان کیا, اصول شاسی میں اس کو بیان کیا, کیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. یہاں پہ جو اصول, جو میراث میں جو حصہ مل رہا ہے وہ بیٹیوں کا حصہ قرآن بیان کر رہا ہے. بیٹی کا ڈبل, بیٹی کو بیٹے کو بیٹی کا ڈبل, مطلب بیٹی کو بھی ملے گا, کچھ بھی ہے بیٹی کو بھی ملے گا. والدین کو چھوڑ دیا, والدین کو بھی حق, یعنی میت کی بیوی کو اور میت کی والدین, والدین زندہ ہے پیرنٹس ان کو بھی, یا جو زندہ ہے ان کو بھی, اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بھائی بہن بھی ہے, وہ بھی نہیں ہے تو اور کلارا تو اور بھی رشتے دار ہے. قرآن نے سب کو سمیٹا, کسی کو چھوڑا نہیں ہے. اور ہم ایک طرفہ کام کرتے ہیں, دوسرے کو بالکل اگنور کر دیں, بالکل غلط ہے. تو قرآن نے کیا کہا, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی اس مقام کو پہنچ جائے, اس ایج کو پہنچ جائے جہاں ان سے غلطیاں زیادہ ہو جایا کرتی ہیں, اور دا موسٹ ایکسپینسو تھنگ اگر ان سے ضائع ہو جائے کسی وجہ سے, ہو سکتا بس کچھ ٹوٹ گیا بھائی, تو ایک انسان کو اس لاکھوں ڈالر کی چیز یا ہزاروں تھاؤزینڈ آف ڈالر کی چیز جو ویسٹ ہو گئی ماں سے یا باپ سے یا دونوں میں, دونوں سے, اس وقت جتنی تکلیف اور کڑن اور پریشانی اس بیٹے کو ہو سکتی ہے. قرآن نے کہا تو تمام غصے کو پی جانا, یہاں تک کہ تمہارے زبان پہ ایک اردو کا ورڈ آتا, ہم کو اردو میں بھی بولتے ہیں کیا اوف کیا کر دیا, یہ بھی نہیں بولنا. یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کر کے تھپڑ مارنا, گھر سے نکال دینا, یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. نعوذ باللہ, اوف بھی آپ کے زبان پہ نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ انت ومن تلیک بھی, یہ حدیث ہے قرآن میں شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی, حدیث میں شان ورود ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ حدیث کس موقع پہ کہی. مجھے صحابی کا نام یاد نہیں لیکن یہ حدیث صحیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں شاید اس سے پہلے واقعہ بیان کیا, میرے خیال سے اور वो सहाबी अभी घर से निकले, उन्होंने अपनी जबान को कोई हरकत नहीं दी, कुछ भी प्रोनाउंस नहीं किया, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो उनका उनकी उनके ख्यालात है। मैं ऐसा ऐसा कहूंगा और मेरे बेटे ने मुझे मेरे साथ ऐसा सुलूक किया, जबान से कुछ प्रोनाउंस नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, अकेले हैं, घर से चले कहां जा रहे हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद मैं कंप्लेंट करूं, हाजिर होते हैं खिदमत में, आप अलैहि सलाम कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तेरे साथ जो कुछ किया, जो कुछ तुमने कहा वो ये है पूरी स्टोरी, अभी वो कह रहा है ऐसा ऐसा किया। आप अलैहि सलाम ने पूरा बयान कर दिया सहाबी के हिसाब से, बोला मैं तो बोला भी नहीं, मैंने तो इन जुमलों को प्रोनाउंस भी नहीं किया, आपको कैसे पता। अल्लाह सुभान व तआला ने बताया क्या वो बाप क्या कह रहा था जो पूरी बात मैं भी नहीं कही। आप सब गौर से सुनो, आज आप छोटे हैं, आपके वालिदैन आपकी परवरिश कर रहे हैं, आपकी हर ख्वाहिश की तकमील करते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि आप लोग सबक याद नहीं करते, आप लोग आमोखता नहीं सुनाते हो, आप लोग पारा नहीं मुझे सुनाते हो। सही बात है, यस सही बात है, आप लोग पास यहीं पर कहीं बैठे थे, मैंने देखा उनको। अगर आप यहाँ पे 4 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आते हैं तो आप रोजाना सबक याद करना, रोजाना सबक पारा जो यस्टरडे आपने सुनाया रोजाना सुना, और जो आमुक्ता आपको हाफिज साहब देते हैं 1 जूज या हाफ जूज 10 पेजेस जो भी है वो रोजाना याद करना, इसलिए कि आप ये कहेंगे आज नहीं सुनाऊंगा कल सुनाऊंगा, कल भी तो आप ही सुनाओगे। इस तरीके से एक बंदा हाफिज बनेगा 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स में कोई हाफिज बनता है भाई? इसके लिए 3 साल मैक्सिमम 4 साल आपके पेरेंट्स आपकी हर ख्वाहिश की तकमील, हर चीज आपके लिए खरीद कर दे, बर्गर खाओ कुछ भी खाओ अलमायदा खाओ हलाल ईट्स वो आपके लिए खरीद कर, आप उनको रिटर्न क्या देते हो? हमें मेहनत करनी चाहिए, रात हमारी होती है, शाम हमारी होती है, सुबह हमारी होती है, घर का बिल आता पेरेंट्स हमारे लिए पे करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे उनको तौबे करते हैं और हमें रिटर्न कुछ देना चाहिए। अगर स्कूल जाते हैं तो क्या आता है? बी सी ए और प्लस तो हिंदुओं के बच्चों का है, जो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू उनके बच्चों के ए प्लस, हमारा क्या बी सी डी क्यों? हमारा ए क्यों नहीं आ सकता भाई? हमारा ए प्लस क्यों नहीं आ सकता भाई? फिर जैसे ही इंटर किया मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, ये सोच है हमारे बच्चे, एजुकेशन सब कुछ है, तालीम सब कुछ है। आप हिफ्स करें, हिफ्स के बाद आप जो भी फील्ड आप चूज करें इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह की तरफ से गैबी मदद होगी और आपकी जो मेमोरी है इंशाअल्लाह हाफिजा वो एक्सटेंड किया जाएगा। आप करके तो देखें, मेहनत करें, रातों को क्या ना मोबाइल पे आईपैड पे छुपा लिया, आप वालिदैन आए तो उसको क्या कहते हैं छुपा के रख दिया, आप भी चले गए तो रात के 1 बजे तक जाग रहे, बहुत गलत है, बहुत गलत है। वो बाप क्या कह रहा था जो नबी पाक अलैहि सलाम, अभी टाइम चल रहा हमारे पास, कि मेरा ये बेटा, वाकया क्या हुआ आज होता है इस पे गौर करें, सुनो ऐसे ही होता है, हम घर खरीदते हैं अपने पैसे से, मेरे वालिदैन का एक और घर है उसमें वो रहते हैं, कभी हमने दावत दी हमारे वालिदैन हमारे घर आ जाते हैं तो वो घर हमारा है, मैं कौन हूँ मेरे वालिदैन का बेटा? तो वालिदैन क्योंकि बेटे की मोहब्बत में आकर के कि इधर मेरे बेटे का तो मेरा, बिल्कुल सही बात है, तो कुछ करते हैं ऐसी चीज जिसमें बहू यानी बेटे की बीवी डॉटर इन लॉ या बेटे की परमिशन नहीं लेते, बेटा बोलता है ये मेरा घर है डैड आपका नहीं, उस बेटे ने बाप को यही कहा ये मेरा है आपका नहीं, आपका वो, इतनी तकलीफ हुई उस सहाबी को, इतनी तकलीफ हुई कि घर छोड़ा और फिर कुछ सोचते हुए नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम के दरबार में आ गए। क्या सोच रहे हैं नबी ने क्या कहा थोड़ा सा सुने, आज ये तेरा है और वो मेरा है, वो वक्त था जब तू 2 दिन का था, 2 हफ्ते का था, 2 महीने का था, तुझे बुखार आता था, मैं भी बुखार था, तू रोता था हम भी रोते थे, तुम्हारी वजह से हम रातों को सोते नहीं थे, तू नहीं खाता था हमारी भूख मिट जाती थी, तुम्हारी बुखार की वजह से हम सब बीमार रहते थे, इसलिए नहीं कि हमें कोई परेशानी है, मेरा बेटा बीमार, आज ये हालत है कि ये मेरा है वो आपका है, फिर हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम खेतों में, सहाबा अक्सर खेतों में काम करते, खेतों में जाकर के 8-9 घंटे काम करते थे, यहूदी हो गया बागों में काम करते, फार्म पे काम करते हैं, अब बड़ी मेहनत और मशक्कत से जो बार्ली के कुछ जो बार्ली होती है वो उसमें आकर के चक्की और जाते में उसको पीसते थे, बड़ी मुश्किल है, और फिर तुम्हारी माँ रोटी बनाती थी उसका, और पहले तुम्हें खिलाते थे बाद में हम खाते, आज ये माल मेरा है और ये तुम्हारा है और वो मेरा है, तुमने कहा कि ये मेरा, मैं नबी के पास जाकर के तुम्हारी शिकायत लगाऊं, नबी के पास आ जाते हैं, नबी आलि सलाम फरमाते हैं बैठो, एक सहाबी से बोलते हैं इसके बेटे को बुला,
अच्छा
अगर बेटा आता है, रिवायत में ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सर्च किया तो जो जुमला मैं अभी कहने जा रहा हूँ उसकी तस्दीक मुझे हुई नहीं, लेकिन मैंने एक बड़े आलिम की तकरीर में ये सुना कि नबी बात आलि सलाम को तस्दीक मिली उसके पेट में पंच, उस वक्त कहा अंता व मालू का ली अभी, आपने सलाम ने उस वक्त कहा अंता व मालू का ली अभी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तेरा तो कुछ है ही नहीं, तेरा क्या है, कुछ भी नहीं है, आपने सुना होगा तीन लोग बनी इसराइल में से एक पहाड़ के नीचे बारिश और तूफान से बचने के लिए चले गए थे, उन तीन में से दो का स्टोरी को इग्नोर करता हूँ, टाइम नहीं, तीसरा बंदा उसके पास बकरियां थी शीप्स थी और गाय वगैरह कुछ जानवर थे, उन जानवरों को जंगलों में चराता था और जब वापस आता था तो बकरियों का दूध दूहता था और एज ए ब्रेकफास्ट लंच और डिनर अपने बच्चों को बीवी को खुद और पेरेंट्स को बुला पिलाता, तो जो तीन लोग उस पहाड़ में गए थे तूफान से बचने के लिए और चट्टान आकर के उस पहाड़ उस एरिया को कवर कर लिया था, तो तीन में से एक ने कहा कि भाई इस यहां से बाहर निकलना तो आसान नहीं, इस चट्टान को तो हम मूव ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, हमारी सबसे बेस्ट अमल ही कुछ कर सकती है, जो सबसे अच्छा अमल हो जो तुमने ओनली खालिस अल्लाह के खातिर किया ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, उसको तो दोनों ही अपना अपना वाकया बयान किया, ये तीसरा बंदा है, या हो सकता है आपके स्टोरी में दूसरा हो या पहला हो, या अल्लाह मेरी चंद बकरियां थी जानवर थे और मैं उसको जंगलों में चराता था और घर आने के बाद मैं उसका दूध निकालता था और फिर बच्चों को माँ को और फादर को और खुद पिलाता, हमारी रात गुजर जाती थी दिन गुजरते थे, एक दिन उन बकरियों को ले चराने के लिए मैं जंगल में गया और चराते चराते जंगल में दूर निकल गया, काफी रात हो गई, जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे रो रहे हैं और मेरे बच्चे मेरी बीवी के पाँव के पास बिलक रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए खाने के लिए आज के दिन बिरयानी और पुलाव तो नहीं थे, दूध ही था बकरी का, मेरे वालिदैन सो गए मैंने बकरी का दूध निकाला, मेरे बच्चे मेरे पाँव के पास आए और मुझे कह रहे थे कि अब्बा मुझे खाना दे दे दूध दे रहे, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मेरे वालिदैन से पहले माँ पेरेंट्स से पहले अपने बच्चों को पिलाऊं, मेरा दिल गवारा नहीं, और मैंने इसको भी गवारा नहीं किया कि अपने पेरेंट्स को जगाऊं कि उठे दूध पी लें और फिर सो जाए, मैंने कहा उनको तकलीफ होगी, पुराने क्या कहा वाला तो उफिन, अगर कुछ बड़ी गलती हो जाए, बहुत बड़ी गलती अगर पेरेंट्स से हो जाए और उस पे इंसान जो कार्रवाई कर सकता है खतरनाक, और सबसे छोटी कार्रवाई क्या है कि इंसान ये कहे कि उफ अब्बा आपने क्या कर दिया, ये भी ना कहो ये है, वो नौजवान कहता है कि मैं सारी रात खड़ा रहा ना खुद पिया ना बच्चों को दिया ना बीवी को दिया और वालिदैन के पास मैं बैठा भी नहीं, थोड़ा आराम करूं, अभी बकरियां चरा करके आया है, दिन का थका हुआ रात का थका हुआ, सुबह हुई मेरे वालिदैन उठे मैंने उनको दूध पेश किया, वालिदैन ने कहा कि मुझे उठा देते हैं, मैंने कहा कि मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि आपकी नींद खराब हो, पहले मैंने अपने वालिदैन को फिर बच्चों को दूध पिलाया फिर बीवी को पिलाया, जो बचा मैंने दिया, दुआ में कहता कि ए अल्लाह अगर मैंने ये सब कुछ तेरी रिजा और खुशनूदी की खातिर किया है इस पहाड़ की चट्टान को थोड़ा हटा दे ताकि हम निकल सकते, बहरहाल फाइनली अगर ये तीसरा था तो चट्टान इतना हट गया कि ये तीनों सलाम जी के साथ पहाड़, क्यों वालिदैन की खिदमत दिन से करनी चाहिए, उनके पास पैसे ज्यादा हैं आप चाहते हैं कि आपका मॉर्गेज वो पे कर दें तो आगे पीछे करना शुरू कर, वालिदैन की खिदमत किस किस लिए होनी चाहिए, ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, इसलिए कि दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, वालिदैन वालमार्ट में कभी नहीं, मॉल में कभी नहीं मिलते, बेस्ट बाय में कभी नहीं, वालिदैन एक ही है। दोबारा आएंगे तो वो स्टेप फादर होंगे, स्टेप मदर होंगे, वालिदैन एक बार चले गए तो चले गए। उवैस करनी रहमहुल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश थी नबी पाक अलैहि सलातो व तस्लीम का हयात है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, काश हम नबी के जमाने में होते, नबी की जियारत करते, नबी की खिदमत करते। ये दुआ करनी चाहिए क्या? कर सकते, लेकिन अच्छी बात नहीं है। क्यों? अगर नबी के जमाने में होते तो अबुल हक का सपोर्ट करते, तो नबी के जमाने में होकर के अबू जहल के सपोर्टर बन जाते तो क्या होता? आज के मुसलमानों के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की स्पेशल फरमान और हुक्म है कि आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि वो उनका ईमान सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप कंपेयर नहीं करना अपना ईमान का सहाबा से, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान। तो नबी सहाबा फरमाते क्या हमसे भी ज्यादा? कहा सबसे ज्यादा उनका ईमान स्ट्रांग होगा। उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, मैंने सहाबा को नहीं देखा होगा, जिब्राइल को आते और जाते नहीं देखा होगा, फिर भी मुझ पर ईमान लाया। सहाबा ने तो नबी को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने जिब्राइल अल अमीन को देखा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं देखा। लेकिन हमारा ईमान कैसा होना चाहिए? हमारे पैर जैसा नहीं, हमारे ग्रैंड पैरेंट जैसा बिल्कुल नहीं, हमारा ईमान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सहाबा जैसा। उसके बाद जितने भी लोग हैं सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए रोल मॉडल हमारे सहाबा है, और कोई सहाबा से मिलकर कोई। सहाबा वो है जिन्होंने नबी के मिजाज को समझा, नबी क्या चाहते हैं सब सहाबा ने समझा। एक बंदा इस्लाम का इनकार करके भाग गया, उसका नाम अब्दुल्ला था, बुखारी में रिवायत, और जमाने तक बाहर रहा। एक मरतबा नबी पाक अलैहि सलातो व तस्लीम मक्का फतह हो गया, आप अलैहि सलातो व तस्लीम सहन काबा में बैठे हुए, सहन मीन्स कोर्टयार्ड ऑफ काबा, बैठे हुए। वो जो बंदा मक्के से जा करके इस्लाम को डिनाई कर दिया, वो आ करके खिलाफे काबा से चिपक के खड़ा है कि मुझे अम्र मिल जाए माफ कर दे। किसी ने आके इतरा कर दिया, अल्लाह फला अब्दुल्ला जिसने ईमान को रिजेक्ट कर दिया था वो खड़ा है वहां पे, मतलब जाके पर्दे खिलाफे काबा को पकड़ के चिपक के खड़ा है। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ओपनली ये नहीं कहा कि जाके पसंद, लेकिन आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की चेहरे और स्किन को देख करके एक सहाबी उठे तलवार ले जाने पसंद करते, नबी अलैहिस्सलाम ये भी चाहते थे। सहाबा मिजाज शरारत والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا। सहाबा के शान पे ईमान पेश करते थे नबी अली सलाह तस्लीम, कोई आयत उतरती थी अल्लाह की तरफ से, कोई हुक्म उतरता था तो उसकी छानबीन करते। इसका मतलब ये नहीं कि नबी पे एतमाद और यकीन होता, ये मतलब नहीं। अंधे और ब्लाइंडली और ब्लाइंड लोगों की तरह बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते थे, वो सहाबा मिजाज शनास, उनसे बेहतर दुनिया पैदा नहीं कर सकती, नहीं उनसे बेहतर दुनिया पैदा नहीं कर सकती। सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि जिंदा है, नबी पाक अलैहि सलातो व तस्लीम मदीना में बाहयात है, उनकी ख्वाहिश है कि मैं नबी की ज़ियारत करूं। बड़ी परेशान है, वालदा उनकी उनकी मदद बीमार है, कोई ट्रीट करने वाला नहीं है। अपनी माँ के पास जाकर के इजाजत लेते हैं कि मैं मदीना जाना चाहता हूँ ताकि नबी पाक अलैहि सलातो व तस्लीम की ज़ियारत हो जाए। माँ कहती बेटा मैं बीमार हूँ, मेरे पास रहे, एक खत लिखते हैं नबी पाक अलैहि सलाम के पास और भेज देते हैं, और सब कुछ जो उनकी ख्वाहिश है उसके अंदर मेंशन करते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी माँ बीमार है, उनको मेरी जरूरत है, मैं क्या करूँ? आप अलैहि सलाम जवाब देते हैं कि आप माँ की खिदमत करें कयामत तक मिलेगी, चोरी मुकम्मल होगी। इसके अलावा कुछ नहीं। बस करने रहमतुल्लाह ने क्या करते थे, रियाजुस सालिहीन में अल्लामा नबवी अलैहि रहमान ने बयान किया है कि नबी पाक अलैहि सलातो व तस्लीम ने अपने सहाबा से उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में तफसील से बयान फरमाया कि यमन का रहने वाला ये बंदा, इसके फादर का नाम आमिर है, और कर्न शाख ब्रांच से जो कबीले मुराद का एक हिस्सा है उससे बिलोंग करेगा। तो तुम्हारे पास आएगा, उसके बदन में सफेद दाग, इसको बर्स बोलते हैं, अल्लाह में नियाउ जिनके बदल बार उसी मन जुनू नहीं मन जुदा नहीं वसे की रस्ता में दुआ सुबह शाम पढ़नी चाहिए। तो पूरे बदन में सफेद दाग है अभी उसके पास, लेकिन जब वो आपके पास आएंगे यानी हज के, जब आपके पास आएंगे विजिट के लिए, तो उस वक्त सारे दाग खत्म हो चुके होंगे बदन के, 1 दिरहम के बराबर किस हिस्से में, शोल्डर के इस हिस्से में, वो खत्म नहीं होगा, वो रहेगा। जब आपके पास आएंगे तो अपना हिस्सा होगा। जब ये पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये मेरा कमीज है, कुर्ता है, आप उनको यानी खलीफे अव्वल से लेकर सारे के सारे मौजूद है उस मजलिस में, उनको तोहफतन दे दीजिएगा, उनको मेरा सलाम कहिएगा, और आप में से जिसकी भी उनसे मुलाकात हो अपने लिए और उम्मत के लिए दुआए मगफरत हर साल। नबी पाक अलैहि सलाम की तस्लीम की वफात हो जाती है, खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं, और फिर हर साल हज का सीजन आता है, लोग उस वक्त आते हैं हज के लिए, हजारों लोग आते थे, इस वक्त भी ऐलान होता है कोई किस नाम का बंदा यमन से आया है क्या, नहीं मिलता है। खलीफे अव्वल का इंतकाल हो जाता है, खलीफे सानी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं, और फिर 1 साल गुजरा है, 2 साल गुजरे, 3 4 साल गुजरे, बहरहाल एक मरतबा हज का सीजन था और ये ऐलान हो रहा था, कुछ लोगों ने एक बंदे को, बूढ़े को पकड़ करके उनके सामने पेश किया कि ये कहता है कि इसका नाम वैस है, इसके फादर का नाम आमिर है, और यमन में जो कबीला मुराद है उसकी शान तमन है, उससे ये बिलोंग। पहले तहकीक जरूरी ना भाई, क्रेडिट कार्ड ऐसे तो नहीं मिलता, पूरा बैकग्राउंड देखना पड़ता है कैसे क्या बंदा, कोई गलत काम फ्रॉड तो नहीं क्या इसमें। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सब कुछ पूछते हैं, फिर ख्वाहिश होती है कि वो सफेद दाग है, पूछते हैं और वो कहते हैं कि सफेद दाग बहुत थे लेकिन खत्म हो गए, थोड़ा सा हिस्सा इससे रहे, देख करके उनको पता चल जाता है कि बराबर है। अब नबी पाक आने इस तरह तो तस्लीम करके कमीज तोहफा के तौर पर आपने दिया था, वो इस पर नहीं आ रहे के पेश करके आपका सलाम पेश करते हैं, और कहते हैं कि ये उमर आपसे ये दरख्वास्त करता है कि आप उसकी मफरत के लिए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की मफरत के लिए दुआ करें। आप इस जुमले पे गौर करें कि दुआए मफरत के लिए कौन कह रहा है, जिसके बारे में नबी फरमाते हैं उमर फिल जन्नत, क्या कहा, उमर फिल जन्नत, और उमर सहाबी ही नहीं है, खलीफे राशिदा है, दुआ के लिए रिक्वेस्ट किससे कह रहे हैं जो सहाबी ही नहीं है। उवैस करनी का रहमतुल्लाह तआला अन्हु का मकाम बहुत ज्यादा है, सहाबी से तो बड़ा नहीं है भाई, सहाबी से बड़ा मकाम तो नहीं हो सकता ना, ये तो हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, सहाबी से बड़ा नबी ही हो सकता, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो दुआ के लिए रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको देख करके शैतान भी अपना रास्ता चेंज कर देता, उनका मकाम कैसा है, और वो कहते हैं कि उमर आपके लिए मैं दुआए मगफरत करूं, आगे नबी पाक आ रहे तस्लीम का हुक्म है आपको दुआए मगफरत करनी। बहरहाल सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह तआला उन तमाम लोगों के लिए जो वहां मौजूद हैं और पूरी उम्मत के लिए दुआए मगफरत करनी, दुआ हो जाए। बहरहाल फिर पूछते हैं अब आपका कहाँ का इरादा है, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ कोफा जाएंगे, तो कहा कूफा का जो गवर्नर है उसके नाम से कि बेटा बिल्कुल, क्या जवाब दिया उमर, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम गरीब परदेसी लोग, हमें कहीं अच्छी जगह सोने का ना कोई शौक है, अच्छा खाने का ना कोई शौक, कुछ भी शौक नहीं, हम कहीं भी रह जाएंगे, किसी को खत लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन मुअर्रिखीन हिस्टोरियन लिखते हैं कि कूफा में से कितना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात, ये लिखते हैं वल्लाहु अल्लाह पता नहीं। गज़वे उहद के बारे में कुरान में सूरह बने सूरह सूरह आल इमरान में कुरान ने कहा कुल अतीउ अल्लाह व रसूल ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अल्लाह की बात मानो और रसूल की बात। सूरह तगाबुल में कुल अतीउ अल्लाह व अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल, तुम लोग अल्लाह की बात मानो और रसूल की बात मानो, यानी जो इताअत का वर्ब है फेल है, 2 बार कुरान ने इस्तेमाल किया, सूरह आल इमरान में 1 बार कुल अतीउ अल्लाह व रसूल, सूरह तगाबुल में अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल। आमतौर पे आप भी फेस करते होंगे बहुत सारे मसाइल हैं, क्या नबी की बातें यानी हदीस हुज्जत नहीं है, यानी हदीस से आप कोई मसला या कोई और भी चीज निकाल नहीं सकते, जबकि प्रूफ के तौर पर पेश नहीं कर सकते। ये एक जमात है इस्लाम, उनके लिए जो कुछ भी है कुरान है। कुरान क्या कहता है, वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू। अगला जुमला है वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। हम ऊपर का हिस्सा पढ़ते हैं और नीचे के हिस्से के बारे में सोचते नहीं कि अल्लाह ने वत्तकुल्लाह कहा, अल्लाह से डरो, और ये भी कहा इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, ये क्यों कहा? कुरान का कोई हर बेकार हो सकता है? नबी का कलाम, नबी के कलाम का कोई हिस्सा जब बेकार नहीं हो सकता है, तो कलाम अल्लाह में कोई हर बेकार कैसे हो सकता है? तो कुरान ने कहा वमा आताकुम रसूलु फखुदू, जो कुछ नबी तुम्हें दे, जो कुछ करने के लिए कहे जिन बात, वो तुम ले लो, और जिन बातों से रोके उनसे रुक जाओ अगर ऐसा नहीं करोगे। और कहा अल्लाह से डरो, तुम्हारे अंदर अगर खशियत इलाही नहीं आई और नबी का कहा नहीं माना, तो ये सुन लो कि अल्लाह सख्त आजाब वाला है। ये अब अगर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम मेरी सुन्नत पर भी अमल करो और मेरे सहाबा खुसूसन खुलाफाए राशिदीन की भी सुन्नतों पर अमल करो, तो ये हुक्म दरअसल किसका हुक्म होगा, अल्लाह का होगा या नबी का? अल्लाह ने क्या दे दिया, जो कुछ नबी तुमको दे। यहाँ देने से मुराद बिरयानी पुलाव या लिंगर नहीं है भाई, यहाँ मुराद अहकामात, जो कुछ नबी करने के लिए कहे उसे करो, नबी जिन बातों से रोके रुको। तो नबी ने क्या कहा, यहाँ पर एक हदीस में क्या है कि तुम मेरी सुन्नत पर भी अमल करो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों पर भी अमल करो। तो हकीकतन नबी का ये हुक्म किसका हुक्म हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ। और एक आदमी अगर नबी की बात ना माने तो गोया किसका इनकार कर रहा है, अल्लाह सुभान व तआला की बात का हुक्म का इनकार कर रहा है। अगर कोई मुसलमान अल्लाह के हुक्म का इनकार करे तो मुसलमान बाकी रहेगा। आप इस तरीके से अगर जुमले को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा क्राइम, कितना बड़ा जुर्म अंजाम दे रहे कि नबी का सिरे से कह देते हैं कि हदीस हुज्जत ही नहीं है, वो छोड़े, नबी की बात अगर हम मान भी लेते कभी कभी तो हम क्या कह देते हैं, सहाबा की बात नहीं, क्या सहाबा से गलती नहीं हुई? हदीस के मामले में मुहद्दिसीन का बिल इत्तेफाक उनका इजमा है, मुहद्दिसीन का कि जरह और तादील जो एक उसूल है हदीस के फील्ड में, सहाबा पर नहीं होगी। ये सहाबी कैसे थे, कैसे खाते थे, किस तरह सोते थे, किस तरह बात करते थे, ये सहाबी के बारे में शामिल। जैसे ही कंफर्म हुआ कि ये नबी आ रही सलाह जो तस्लीम की मेल और फीमेल सहाबी है, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। हाँ, नबी के बाद जो लोग हैं, सहाबा के बाद जो लोग हैं ताबईन, उनका सहाबा के बाद ताबईन आते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन होगा, सहाबी का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। हर मुल्क में कुछ उसूल होते हैं और कुछ 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 ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हुकूमत के जो लोग हैं वो लोग वहां पर जाएंगे या वही लोग वो काम करेंगे। आम आदमी का वहां पे जाना ममनू और कोई भी नहीं होता है, नो इंजरी में इंजरी कर दिया और पुलिस ने देख लिया तो दिन भर में जो 150 कमाया दो उसको। और कुछ आर्ग्यू किया तो सबसे पहले पुलिस वाला क्या करता है, अपने गन पे हाथ रखता है, जर्रा बराबर किया दुश्मन करे। इस खौफ से हम पुलिस वाले से डरते हैं कि नहीं, इस खौफ से हम डरते हैं? तो नबी के शान में गुस्ताखी और नबी के सहाबा साथियों के शान में गुस्ताखी इंसान को किस मकाम पे पहुंचा देगा? अगर हम किसी की माँ को गाली दें, किसी के फादर को गाली दें, और फिर वो मरने और मारने के लिए नबी और नबी के सहाबा के शान में गुस्ताखी और हम सुने और हम कुछ नहीं बोलते। सैयदना उमर करने रहमतुल्लाहि अलैह अपने फार्म में खेत में कुछ कर रहे और गजवे बहुत चल रहा है, जब ये बात आ रही सरह तो तस्लीम एक कुफार हमला करते हैं और आप आ रही सरह तो तस्लीम इत्तेफाक से एक गड्ढे में चले जाए। लेकिन आप आ रही सरह तो तस्लीम जो लोहे का कोट पहना हुआ था वो भी बदन और हैवी था, जाहिर बात है। और फिर कहने का मतलब ये है क्या कि जंग तो सहाबा ही जीत गए थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 70 सहाबा शहीद हुए, तो ये तो काउंटिंग जो भी बाद में हुई। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम पे जिस बंदे ने हमला किया था उसकी वजह से आपके दंदा ने मुबारक शहीद, ये इत्तला हजरत उवैस करनी रहिमहुल्लाह ताला ने अरू दिया। तो उनके बारे में आता है कि उन्होंने एक पत्थर लिया और सारे दांत अपने तोड़ दिए, ये कह करके कि मेरे नबी के दांत टूटे और उनको तकलीफ हुई, कौन सा दांत टूटा ये नहीं पूछा उन्होंने अपने सारे। हमें अपने दांत तोड़ने की जरूरत नहीं, हाथ पांव काटने की जरूरत नहीं, हमारे लिए हुक्म ये है कि नबी की सुन्नतों पर अमल करें। किस तरीके? मशहूर शेख हजरत जकरिया, अशेख अल हदीस जकरिया साहब रहमतुल्लाह, और मशहूर आलिम कुरान व सुन्नत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बीमार पड़ गए, बीमार का मतलब क्या कि थोड़ा सा ज़ोफ़ और कमजोरी आ जाता। हजरत शेख अल हदीस मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक खत लिखते ये सहारनपुर में उठाना हो गए, खत में क्या लिखते हैं कि आपके अंदर ज़ोफ़ और कमजोरी बहुत ज्यादा है, उसके लिए नबी आलैहिस्सलाम तस्बीह में तिलबिया जो एक खाने का हिस्सा होता है बड़ा अच्छा बनता है, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ताकत बहुत ज्यादा होती है, तिलबिना तिलबिना मैं भेजता हूँ बना करके आपका। उन्होंने जवाब दिया हजरत थानवी ने लिख करके कि हजरत उसके अंदर कभी कभी नुकसान भी होता है। हजरत शेख उल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फिर जवाब में क्या लिखा उस पर गौर करें, तिलबिना में तो कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता इसलिए कि नबी ने फरमाया है इसका खाना और इस्तेमाल करना तो सुन्नत है, सुन्नत में तो नुकसान तो हो ही नहीं सकता। जब आप इसको इस्तेमाल में जब भेजू और आप इस्तेमाल करें, अगर उसका टेस्ट खराब लगे आप तो आप ये कह दें कि गलती हो सकता है ना, तिलबिना में खराबी कुक की तरफ से आई है सुन्नत की तरफ से नहीं, सुन्नत तो सुन्नत, कोई भी सुन्नत आप उठा के देखते, कोई भी सुन्नत इसके बारे में कहा जाए कि सुन्नत और कन्फर्म भी होना चाहिए सुन्नत। आजकल मार्केट मार्केट में बहुत बेकार चीजें आ गई हैं, तो सुन्नत है नबी की सुन्नत है, उसके अंदर नुकसान हो ही नहीं सकता। नबी की एक सुन्नत है कि आप अरे सलाम सोने से पहले मिसवा कर, हमने खाना खाया है या गुफ्तगू किया तो जाहिर बात है बदबू आ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम रोजाना सोने से पहले मिसवाक करते थे, दांत अच्छी तरह साफ करते थे, फिर सोते थे। रात में अगर दोबारा किसी वजह से आंख खुलती थी और बाथरूम इस्तेमाल करते थे, अगर आप अलैहिस्सलाम वजू करना नहीं चाहते या अभी तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ आंख खुली आप अलैहिस्सलाम की, दोबारा मिसवाक करते थे, तो जो दोबारा मिसवाक करते थे उसको रहने दें, सोने से पहले जो आप अलैहिस्सलाम मिसवाक फरमाते थे हमें बेनिफिट दिखना नहीं है। नबी ने कहा तो खत्म, नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम ने कहा कि ये करो तो खत्म, लेकिन अगर वाकई किसी सुन्नत के फायदे का हमें मालूम है तो बयान करना तो अच्छी बात, हमें मालूम है, नहीं मालूम कोई बात नहीं, नबी ने फरमाया अल्लाह ने कहा उसका हुक्म हमें करना है। जो शुगर के पेशेंट उनका शुगर इंशा अल्लाह अगर मिसवाक अच्छी तरह बरस ना करें, मिसवाक अच्छी तरह कर करके उनका शुगर के लेवल इंशा अल्लाह मुनासिब रहेगा, सुबह तक वो ऊपर नहीं, आप इसको करके देखें बहुत ज्यादा फायदा, इसलिए कि जो जर्रात खाने के होते हैं हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं और हम साफ करते नहीं, वो वैसे के वैसे थे। ये नबी की एक सुन्नत है और हर सुन्नत पे अमल करने पे इस वक्त 100 शहीद का सवाब मिलेगा। मन तमस्सक सुन्नती इंद फसदी फलहु अजरुन शहीद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बंदा भी मेरी एक सुन्नत पे अमल करे ऐसे वक्त में जब उम्मत में बिगाड़ फसाद पैदा हो और लोग सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे, उस वक्त एक सुन्नत पे अमल करेंगे तो 100 शहीद का सवाब मिलेगा। और जब शहीद मैदान जंग में अल्लाह के खातिर लड़ता है और शहीद हो जाता है, उसका जो खून का फर्स्ट ड्रॉप होता है उसके सारे गुनाह फर्स्ट ड्रॉप की वजह से गिरने की वजह से माफ हो जाते, बाकी जो रेस्ट ऑफ द ड्रॉप्स है उसके मकाम बुलंद, पहले कतरे में सारे गुनाह माफ हो गए, अभी 99 शहीद और इसके खून का और कतरे बाकी है एक सुन्नत के अमल करने की, कितना बड़ा अजर। अगर हम दिन में अगर देखें सुबह से लेकर के रात सोने सोते तक, मैं समझता हूँ सैकड़ों सुन्नत, मैं कपड़ा पहनना है तो हाथ और पांव, दाएं हाथ और पांव उस कपड़े में पहले डाले, ये नबी की सुन्नत है, और हम ये सोच करके डालें कि नबी की सुन्नत है इंशाल्लाह सवाब। घर से बाहर जाए तो लेफ्ट फुट पहले रखें, जो भी दुआ है बिस्मिल्लाह तबारक व तआला, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नबी ने फरमाया है हर की सारी चीजें इंसान जितनी भी चीजें इस दुआ की पढ़ने की वजह से इंशाअल्लाह हमारी वापसी तक महफूज है। ये हदीस है, जो बंदा ये दुआ बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो आलम वाला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लेता है, उसके वापसी तक सारी चीजें महफूज रहेंगी जैसे छोड़ के जा रहा। एक है नबी से इश्क, एक है नबी से मोहब्बत, और एक है नबी की बातों और नबी के अमाल अहवाल और आमाल से मोहब्बत। नबी आने सलाह तो तस्लीम से मोहब्बत जवानी, इसको तो मोहब्बत बोलो। नबी आ रही सलाह, हमारे नबी ने हमारे महबूब ने जिन बातों को करने के लिए कहा और जिन अमान से रुकने के लिए कहा, उसी के करने वालों में से एक शख्स का नाम है उवैस कर्म। एक शख्स का नाम क्या है? उवैस कर्म। कि माँ की मोहब्बत और खिदमत की वजह से और गजवे उहुद में नबी आ रही सलाह तो तस्लीम के दंदाने मुबारक शहीद हो जाते हैं। कौन सा दांत शहीद हुआ उन्होंने सोचा भी नहीं, सारे दांत को तोड़। हो सकता है ये वाकया ज़ईफ़ हो, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा था सुना, ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी की मोहब्बत है। जब नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि फजर से पहले दो सुन्नत मत छोड़ो, नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि हर महीने में अय्याम 20 के 3 रोजे रखो, नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि खाने से पहले हाथ धो लो। अगर नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि जब आप घर में दाखिल हो तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बोलो, हम हमेशा इसके खिलाफ रहते हैं। फिर हम पेरेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे ओबीडियंट होने चाहिए। कैसे हो सकते? हमने अल्लाह की बात नहीं मानी, हमने अल्लाह के हबीब की बातों को ठुकराया, तो क्या मेरे बच्चे फरमा बरदार होंगे? ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। क्या है? पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हमें हमारे बच्चे फरमा बरदार ओबीडियंट चाहिए, तो हमें सबसे पहले अल्लाह की बात माननी, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी होगी, और हमें हमारे पेरेंट्स की बात, अगर हमारे टीचर्स हैं असातिज़ा हैं उनकी बात माननी, चाहे स्कूल के टीचर्स हों चाहे टीचर्स। नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के बारे में हदीस में कहीं नहीं आता, कुरान में भी कहीं नहीं है कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम 23 इयर्स तक वही रिवलेशन लेकर के आपके पास आए, और कभी भी आप अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल के रिस्पेक्ट में अपनी चादर अपने कंधों से उठा करके रिस्पेक्ट के लिए बिछाया हो कि आप इस पर बैठे, कोई हदीस, कोई हदीस। हालांकि जिब्राहिम बिन वजह एक तरीके से डायरेक्टली नहीं, एक तरीके से मालिक और टीचर तो है, ये करके आ तो रहे हैं, लेकिन एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मस्जिद नबवी से निकल रहे थे, फिर देखा एक बूढ़ी खातून आ रही है आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तरफ। सहाबा फरमाते हैं कि हम सब भी थे, जब वो बूढ़ी खातून आ गई और मस्जिद नबी के अंदर आकर के बैठने लगी, तो आप अलैहि सलाम उनको बैठने से रोका, रुकिए, और अपनी मुबारक चादर अपने कंधे पर से उतार कर उसको बिछाया और कहा अब बैठिए। क्या कहा? अब बैठिए। वो खातून कौन थी? सहाबा, जो नहीं जानते थे आपस में तो मजबूत कर रहे थे कि बहुत खातून थी जिनके लिए आप अलैहि सलाम ने अपनी मुबारक चादर बिछाई। मान हुआ ये हलीमा सादिया रजी अल्लाह
जी
तआला आपकी रजाई माँ है, माँ की खिदमत के लिए नबी ने चादर बिछाई, जिब्राइल के लिए कभी चादर नहीं। मकाम, ये सवाल है, क्या सवाल है? मकाम माँ और बाप, माँ का ज्यादा है या उस्ताद? कुछ लोग कहते हैं उस्ताद का, कुछ लोग कहते हैं कि माँ का ज्यादा है, लेकिन सही ये है कि माँ का ज्यादा हक है उस्ताद। इसका मतलब ये नहीं उस्ताद की बात नहीं मानी जाए, उस्ताद का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन माँ का मकाम बड़ा है इसलिए कि 23 इयर्स में इसको एक बड़े बहुत बड़े शेख ने साबित किया है। मस्जिद नबी के एक प्रोग्राम में एक शेख थे और वो जामिया मदीना मनोवरा के प्रोफेसर थे हदीस के, वो बयान दे रहे थे, और हमारे दारुल उलूम के एक शेख जो हमारे उस्ताद थे वहां बैठे थे, तो वालिदैन और असातिज़ा टीचर के ऊपर बात चल रही है किसका मकाम बढ़ा, उस्ताद उन्होंने कुरान की ऐसी हदीसों से आ सहाबा और अकाबरीन के अकवाल ला करके ये साबित किया कि उस्ताद का हक ज्यादा है माँ के मुकाबले। वो जो शेख बैठे हुए थे, तो शेख ने कहा माँ फगीना कलम, मैंने तुम्हारी बात नहीं समझा। शेख ने दोबारा फिर कहा माँ फगीना कलम, ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आया कि तुम सारी बात ला करके उस्ताद के मकाम को बड़ा कर रहे हो और माँ के बारे में कह रहे हो कि माँ का मकाम, उस्ताद का मकाम माँ से बड़ा है। बताओ कुरान में हदीस में कहीं है? कहीं नहीं है। और ये वाकया पेश किया, कहा चुपचाप चल गया। उन्होंने पूछा ये शेख कौन थे? उस्ताद हदीस मुफ्ती सईद अहमद पानीपुरी गुजरात में रहने वाला। तो कहने का मतलब यही कि माँ का इतना बड़ा गुण, और माओ से हमें ये कहना है कि अहादीस और सहाबियात की जो वाकयात है, स्टोरीज है, हमें उनको पढ़ना चाहिए। अगर वाकई हमें हमारे बच्चे फरमा बरदार चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की, हमें चाहिए कि हम नबी पाक अलैहि सलाम व तस्लीम की बात माने। अल्लाह ताला इंशा अल्लाह वैस करने जैसी औलाद। अगर हम अल्लाह सुबहान व तआला की बात अपनी मर्जी में या अपनी जरूरत में तो मानते हैं, या जहां हमारा बेनिफिट है, जहां हमारा फायदा है, नबी की बात मानते हैं या सहाबा की बात मानते हैं या सहाबियात की बात मानते हैं, लेकिन वहां हम इनकार कर देते हैं जहां हमारा अपना कोई फायदा नहीं है। बात सबसे ज्यादा नंबर, सबसे पहले हम अपनी औलाद को, इसलिए हर मोड़ पे माँ और बाप दोनों पर फर्ज है कि औलाद को अच्छी तालीम दे। अच्छी तालीम से मुराद यहाँ पर हायर एजुकेशन नहीं है, यहाँ पर अच्छी तालीम से मुराद ये कि आदाब सिखलाते, ये मुराद। अच्छी तालीम को देना अच्छी बात, तालीम तो होनी चाहिए, बगैर तालीम के इंसान दुनिया में किस तरह जिएगा। तालीम दुनिया भी चाहिए और दीनी भी चाहिए, लेकिन आदाब और तरीके सिखलाएं। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अनु और हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला अनु, ये दोनों मस्जिद नबी के अंदर है, और सदके की चना चिकपीस का ढेर लगा हुआ था। वो दोनों बच्चे थे। सैयदना हुसैन के बारे में आकर रजी अल्लाह तआला ने छोटे उन्होंने उठाया और उन्हें डाल दिया। आप अलैहि सलातो व तस्लीम दौड़ के आए, नाना कहने दौड़ के आए और कहा क्या कि हम सदके का माल नहीं खाते हैं। और बच्चे का वो तो चला गया अलग, किसी उतर गया भाई क्या करेंगे। आप अलैहि सलाम ने पूरी इतनी उंगली इतना हाथ अंदर डाला, बच्चे को तकलीफ नहीं हुई भी।
बिल्कुल
भाई नाना ने ये काम किया, अच्छा किया, हम क्या कहेंगे, आप नाना हो ये काम करते हो। नबी अलैहि सलाम ने कहा कि हम सदके का माल नहीं खाते, फिर आप अलैहि सलाम ने अपनी उंगलियां उनके हलक के नीचे उतारी, पूरा कहते सदके का माल इनके लिए हराम है, हराम माल खाने से बचाने के लिए। क्या हम ऐसा ही करते हैं? हम ऐसा ही करते हैं। हम औलामा गीबत करते, हम अइमा गीबत, हम इमाम या दूसरे हजरात हमेशा गीबत। किस तरीके से हमारे माल में बरकत होगी, किस तरीके से हमारी औलाद उस्ताद बनेगी, अगर बन भी गई तो हलाल और हराम पे हमारे हाफिज बच्चे किस तरह अमल करेंगे। कुरान तो यहूदी भी अक्सर लेके भाई, कुरान के हाफिज और तालिम तो यहूदी और क्रिश्चियन भी हो जाते हैं। असल मकसद है अल्लाह की रजा और नबी की रजा। कुरान पढ़ने का, कुरान समझने का, याद करने का मकसद है अल्लाह सुभान व तआला की पूरी रजामंदी और नबी पाक अलैहि सलाम की तस्लीम की सुन्नत पे अमल करना, आपकी मोहब्बत। और ये मोहब्बत कब आएगी? जब हम अकाबरीन और अच्छे इंसानों की सोबत में अपना वक्त खर्च करें। चीज का असर पड़ता है, लिबास का असर बेइंतहा पड़ता है, लिबास का असर बेइंतहा पड़ता है, खाने का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। सुन्नतों पे अमल करें, उसका असर हमारे जिंदगी में नजर आएगा। हम जब मस्जिद के अंदर आते हैं तो अल्लाहुम्मा इफ्तहली अबवाब रहमतिक बोलते हैं, ये नबी पाक अलैहि सलाम ने मस्जिद में इंटर होने की दुआ सिखाई है, ये अल्लाह प्लीज हमारे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। जब निकलते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका मिन फ़ज़लिक, कोई कहीं कहीं मिन फ़ज़लिक वा रहमतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका मिन फ़ज़लिक दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका मिन फ़ज़लिक क्यों पढ़ते हैं? फ़ज़ल के माने क्या? हमारे नबी आ रहे सलातो व तस्लीम के करोड़ों सलातो सलाम नाज़िल, सब लोग बात रोशनी भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलि आलि व आलि मुहम्मद व मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलि इब्राहिम व आलि मजीद। जब अल्लाह सुबहानहु व तआला ने सूरह जुमा की आयत नाज़िल की, फ़ैदा क़ुज़ियत अस-सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ضि वाबतग़ू मिन फ़ضْلِ اللَّهِ, जब नमाज जुमा मुकम्मल हो जाए तो आप जमीन में फैल जाए, मतलब अपने कारोबार में जाओ भाई, जॉब पे जाओ, जो कारोबार वहां जाओ। वबतगू मिन फजलिल्लाह, और अल्लाह की फजल को तलाश करो, फजल से मुराद है रिस्क रोजी कारोबार में जाने से। जब ये आयत अल्लाह ने नाजिल की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ये दुआ सिखलाई कि जब आप मस्जिद से बाहर निकले तो दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजल, ए अल्लाह मैं आपसे आपका फजल यानी रिस्क का सवाल करता। मस्जिद में फर्ज के लिए गए थे, वापस क्या चाहेंगे, कारोबार को जाना है, कारोबार तो करना है, घर तो चला रहा है, तो दुनिया है तो फर्ज है, वो तो ऐसा नहीं है कि भाई हम क्या नाम है घर के अंदर बैठ जाए कोई आकर खिलाएगा, नहीं तो जुर्म क्राइम है, जाकर काम करो। तो यहाँ फजल से मुराद है रोजी, और रोजाना 5 मरतबा अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो 5 बार निकलते भी होंगे इंशाअल्लाह, और हर मरतबा ये दुआ पढ़नी चाहिए और बच्चों को स्ट्रिक्टली सिखानी चाहिए दुआ बोल। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, फजल से मुराद क्या है यार, रोजी है, रिस्क है, ये कौन सा क्या है। हमें उस फैमिली रहमतुल्लाह की स्टोरी सुन के बड़ा अजीब लगता है, बड़ा मजा आता है और आना चाहिए, कि माँ की खिदमत किस तरह होनी चाहिए, नबी की सोहबत को तक। प्रेसिडेंट जो बाइडन नाम है उनका अगर वाकई में लेकर आ जाए, आप आइए व्हाइट हाउस में मिलिए, अगर बीबी ने परेशान किया तो 3 तलाक दे दिया, चलो पहले मुलाकात कर दो, आप ये अपॉर्चुनिटी दोबारा कहाँ मिलेगी। नबी पाक अलैहि सलातु व तस्लीम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, तमाम अंबिया अलैहि सलातु व तस्लीम के सरदार हैं, और एक हदीस में है, और आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा इसलिए किया कि नबी को पैदा कर लो, उनकी सोबत छूट गई और उन्होंने छोड़ी, अगर छोड़ रहे थे तो बेइंतहा अफसोस था, इसीलिए नबी को खत लिखा और नबी ने खत में खत के जरिए जवाब दिया कि आप यहाँ ना आए, हम कयामत में मिलेंगे अपने यहाँ, हम सब अहद करेंगे, अगर वाकई में हम सब प्रॉमिस करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अगर हम में से किसी ने अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी गुस्ताखी की है जबान से या एक्शन से नाउज बिल्ला, तो सबसे पहले माँ बाप जिंदा है तो माफ उनसे माफी मांगे, और अगर जिंदा नहीं है तो दुआएं मगफरत करें, उनके बिहाफ में सदका करें और अल्लाह ताला के सामने डेली मगफरत मांगे, इसलिए कि अल्लाह ताला माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वाले को दुनिया में मौत से पहले सजा देता है। पाकिस्तान के वाक ये हमारे मुल्कों में भी होता है, मैंने एक बंदे को देखा भी है, लेकिन जो वाक्य पाकिस्तान को भी मैंने सुना, बहुत सारे वाक्य मैंने पाकिस्तान के नाम इसलिए नहीं लिया ना, मुझे पाकिस्तान के कई पसंद कर, इसलिए कि पाकिस्तान हमारा ही मुल्क है। तो एक बंदा था नौजवान, काम कुछ नहीं करता था और वालिदैन को मजबूर करके हमेशा पैसे देता और जाके फिल्में देखा था, भाई वालिदैन बूढ़े हो गए कहीं से मांग के लाते कमा देता उनको खिलाऊ, हमेशा चला जाता और बदतमीजियां करता है, याशियां करता, रात देर देर लेट नाइट आता था, बाप का इंतकाल हो गया, माँ जिंदा थी और सोर्स ऑफ रिस्क कुछ भी नहीं है, ये बच्चा कुछ करता नहीं, नौजवान है बिल्कुल, रोजाना माँ मना करती है, समझाती है, ईमानदार नहीं, एक बार माँ ने डोर बंद कर दिया, दीवार टूट के अंदर आ गया, माँ इंतजार में थी, गई और एक थप्पड़ मारा, उसने पलट के माँ को मारा, खैर चली गई माँ, क्या करती, सो गई, रात गुजर गई, दिन आया, बेटा फिर वैसे ही माँ का इंतजार किया, उस एक थप्पड़ ने जो इस जो इसने अपनी माँ को मारा था उस थप्पड़ ने असर किया चंद मिनट के बाद, उसके पाँव में एक पाँव में दर्द महसूस हो रहा, पैसे ही नहीं इलाज कैसे कराया, दर्द बढ़ता गया, पेन बढ़ता गया, आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चंद दवाइयां और चंद हफ्ते में पेन बहुत ज्यादा होने लगा, फाइनली डॉक्टर ने कहा पाँव काट, पाँव काटना, पाँव काटने के बाद जो दवाइयां दी थी तो जख्म खुश्क नहीं हो रहा था, उसके अंदर पस आने के बाद बेंतिया बदबू, बेंतिया बदबू, लोगों ने इसको खाया उधर से, और भी दिन रात कहाँ रहता था, कचरे के ढेर पे, जो भी इंसान आता था अपने चेहरे पे मास्क या कुछ कपड़ा रखता था, बदबू बहुत दूर तक फैल जाती थी, वो बुलाता था करीब में नौजवान, यहाँ अपने चेहरे को छुपाओ मेरे पास, क्या कहता था, तुम ये नहीं जानना चाहते हो कि मुझे ये तकलीफ और ये परेशानी क्यों हुई, ये पेन और ये बस मेरे जख्म से और इतनी बदबू क्यों आ रही है, इसलिए कि मैंने अपनी माँ
यार
ये वाकयात को इबरत हासिल करें, हम सब इबरत हासिल करें, वालिदैन की खिदमत करें और वालिदैन बच्चों की खिदमत करें। बच्चों की खिदमत करने का मतलब पांव दबाना, मसाज करना नहीं, बच्चों को अच्छी तरह, बच्चों को दीन सिखलाना, बच्चों को दुनिया सुन्नत के मुताबिक गुजारने का अदब सिखलाना। अल्लाह ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة وزيد من ذمتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربنا لا تحملنا إن نسينا إن أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت خير من يا الله يا الله مالك يا الله مالك تعاطي مع فرحك يا الله مالك والدين تعاطي مع فرحك يا الله تعاطي مع فرحك يا الله مالك والدين مخرج فرحك يا الله مالك والدين فاهم يا الله 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 قرآن يا الله حديث عالم بنا يا الله بنا يا الله نبي بعد على الصلاة والتسليم في الأمر الذي ولا بنا يا الله الله يا الله تعالى الإعلامات على المبعث عليه الصلاة والتسليم في سنة محمد صلى الله عليه وسلم على بنا يا الله ہمارا فرما بتانا اولاد بنا يا الله ان کو دنیا کے جتنے بھی گناہ ہے یا اللہ یا اللہ جتنی بھی گندی چیزیں ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کو تمام گندی چیزوں سے یا اللہ دور فرما یا اللہ ہمارے مدرسوں کو آباد فرما یا اللہ ہمارے مسجدوں کو آباد فرما یا اللہ دنیا کی تمام مسجدوں الحرمين الشريفين على المسجد الاقصى من فضل فرما ہمارے مسجدوں کو آباد فرما اور ہمارے بچوں میں یا اللہ بھی پیدا فرما سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.
Thank you.